ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कराए जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की पूर्व सदस्य और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आजकल सुर्खियों में है और एनटीए ने यूजीसी नेट, एनसीईटी और संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा की नई तिथियां घोषित कर दी हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर और आप यूजीसी की सदस्य रही हैं सुषमा यादव। प्रोफेसर सुषमा, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद और नमस्कार सबको।
सबसे पहले आपसे बात की शुरुआत करते हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसने तीन तारीखें नई घोषित कर दी हैं और लगातार अभी सुर्खियों में ये बना हुआ है क्योंकि कुछ परीक्षाएं कैंसिल करनी पड़ी हैं। विद्यार्थियों की निगाहों से, जो छात्र हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी निगाहों से आप देखें तो उनके लिए क्या आपका संबोधन होगा, कैसे वो आश्वस्त होंगे कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो ठीक तरीके से हो रही हैं और कैसी तैयारी करें?
देखिए, उन सब जो छात्र हैं जो इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और कर रहे थे, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वे सबसे पहले तो जो एक मन में अवसाद थोड़ा सा होगा, थोड़ी उदासी भी होगी, उन भावनाओं को मन से निकालें क्योंकि दुर्घटनाएं हमेशा नहीं होती और दुर्घटना कभी भी हो सकती है। एनटीए बहुत प्रयास करके, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पहले तो आइडिया ही उसका इसलिए था कि बच्चों की बहुत सारी परेशानियों को, भागदौड़ की परेशानियों को, एक शहर से दूसरे शहर जाने की समस्याओं को, बहुत सारी परीक्षाएं देने की समस्याओं को समाप्त किया जा सके, इसलिए एक सेंट्रल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई और जिसका नाम यहाँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रखा गया। और उससे अपेक्षा थी कि धीरे धीरे वो जो ये प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनको अपने हाथ में ले ले ताकि बच्चों को एक सम लेवल फील्ड मिल जाए। नहीं तो एक प्रदेश किसी प्रकार से एग्जाम लेता, दूसरा प्रदेश किसी प्रकार से एग्जाम लेता और बच्चे वहां भागते दौड़ते, कभी क्लैश भी हो जाते थे एग्जाम्स। तो इन सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई और अब तक बहुत अच्छे से उसने परीक्षाएं भी की, इतना कि सबका विश्वास उस पर बनता चला गया। और अब तो ये था कि नौकरियों के लिए भी जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं कर रहे थे, पहले एंट्रेंस के लिए फिर नौकरियों के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम जिसको हम कहते हैं, वह भी एनटीए को देने लगे और इस प्रकार एनटीए का काम बढ़ता चला गया। फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा आ गई, फिर नीट और जेईई ये भी कलेक्टिव होने लगे। तो इस हिसाब से ये काम बढ़ता गया और ये विश्वसनीयता भी थी एनटीए की कि उनका काम इतना बढ़ा कि सबने काम देना शुरू कर दिया। ये एक दुर्घटना ही कहूंगी, ऐसा हुआ कि कुछ पेपर लीक हुए, कुछ स्थानों पर कुछ और अनटूवर्ड या अनवांटेड डेवलपमेंट्स मैं कह सकती हूँ हुए, और वो इसलिए भी कि बहुत विशाल देश है, बहुत विषमताएं भी हैं और बहुत अपेक्षाएं भी हैं। तो जहां स्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां इस प्रकार की कार्यवाहियां करने के अवसर भी अधिक होते हैं। इस रूप में एनटीए के जो पिछले पेपर्स लीक हुए और उनको और कहीं पर ग्रेस मार्क्स की या सही एग्जाम सेंटर न होने की इस प्रकार की घटनाएं हुई, उससे बच्चों में ये तो आया कि इतनी मेहनत की उन्होंने, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इतनी मेहनत की, मैं फिर कहती हूँ कि उनकी मेहनत कम कराने के लिए ही ये संस्थाएं बनाई गई थी। इसलिए इस एक दुर्घटना से निराश न हो और एक बार फिर से विश्वास रखते हुए, आश्वस्त होकर वो अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं।
प्रोफेसर सुषमा, आपने बहुत ही मोटिवेटिंग बात कही बच्चों के लिए कि बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत के साथ परीक्षाओं में फिर जुड़ जाएं। और उन सारे छात्रों के लिए जो यूजीसी नेट की कैंसिल्ड परीक्षा फिर से दे रहे हैं, उनके लिए हमें एक बार डेट्स बता दें कि यूजीसी नेट इसकी परीक्षाएं जो हैं 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच ली जाएंगी और यूजीसी नेट उनके लिए अनिवार्य है जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचिंग के काम में आना चाहते हैं। साथ ही जो ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा है वो 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच होगी, जबकि एनसीईटी की परीक्षा जो है वो 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी। प्रोफेसर सुषमा, इसमें हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि ये जो तीनों परीक्षाओं का नाम लिया, यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट और एनसीईटी, इन तीनों के बारे में बताएं कि ये किस लिए ये दी जाती हैं और कितनी आवश्यक है ये।
देखिए, जो यूजीसी नेट है वह अभी तक तो केवल टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम था, कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वो एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट था बेसिकली। अभी इस बार उसकी अर्हता और उसकी वांछनीयता और बढ़ गई है क्योंकि उसी के साथ JRF भी जुड़ गया है और उसी के साथ आपकी जो PhD में प्रवेश है वो भी जुड़ गया। तो नेट परीक्षा की एलिजिबिलिटी होगी, फिर उससे कुछ अधिक मार्क्स होंगे, उनकी JRF भी उसी में होगा और PhD प्रवेश के लिए भी विश्वविद्यालयों को इस बार यह रेगुलेशंस मिली हैं UGC की ओर से। UGC ने निर्णय लिया था कि प्रवेश परीक्षा के लिए भी वो उन्हीं अंकों पर रिलाई कर सकते हैं। तो नेट UGC इस बार और अधिक महत्वपूर्ण, इट इज ए काइंड ऑफ 3-in-1 टेस्ट। एक टेस्ट से आप 3 उद्देश्य पूरा करते हैं। CSIR JRF जो है वह उसी प्रकार से एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्योंकि वैज्ञानिक विषय में जो आगे शोध करना चाहते हैं और उसके शोध में जुड़े रहना चाहते हैं उसके लिए सरकार जो सपोर्ट देती है उसके लिए वह एक प्रकार से अर्हता परीक्षा है। और तीसरी जो आपने बताई
NCET,
मैं एक बार याद दिला दूं, NEP 2020 जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो शिक्षकों को उस शिक्षा नीति के फोकस में रखती है और इसलिए उस शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा भाग इस बात पर बल देता है कि शिक्षक अच्छे होने चाहिए और शिक्षक अच्छे जब होंगे जब शिक्षक शिक्षा अच्छी होगी। और इसलिए यह एक एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि यह भी अनेक प्रकार से टेस्ट होते थे अभी तक, तो वह भी एक केंद्रीय प्रवेश परीक्षा जैसी हम लोगों ने प्रारंभ की है। जो वह देंगे तो वह BEd जो अभी तक बैचलर ऑफ एजुकेशन था, अब ITEP भी हो गया है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आया है, उसके लिए अर्हता उनकी निर्धारित होगी। इस प्रकार से ये तीनों परीक्षाएं विद्यार्थियों को, उम्मीदवारों को इन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों, शिक्षक शिक्षा, वैज्ञानिक शोध और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा प्रतियोगिता ही कह सकते हैं
जी, बिल्कुल,
उसके लिए तैयार करती है। तो ये इनके बेसिक उद्देश्य हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि जब इनका इतना बड़ा दायरा है तो कितनी बड़ी संख्या में युवा इनमें भाग लेंगे। कहीं कहीं ये कोटर्मिनस भी होंगे, कहीं कहीं वही छात्र होंगे जो ये परीक्षाएं भी देंगे, वो परीक्षाएं भी देंगे और कहीं कहीं ये छट भी जाएंगे क्योंकि जो जरूरी नहीं है जो ITEP की परीक्षा देंगे वो CSIR JRF भी दें या नेट भी दें। तो इस तरह से 3 बड़े क्षेत्र ये 3 टेस्ट एक प्रकार से कवर करते हैं। यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आपने मुझे अवसर दिया है
जी।
तो अपने युवाओं को ये बात कहना चाहूंगी कि जरा सोच कर, मनन कर, अपने साथियों से चर्चा कर, अपने गुरुओं से चर्चा कर, अपने माता पिता से चर्चा कर, परिवार में चर्चा करें और जिस पर वो विश्वास करते हैं उससे चर्चा करें। यह निर्णय तो कम से कम ले ही लें कि उनका भविष्य किस दिशा में होगा और यदि वो उसी पर अभी से फोकस करेंगे तो उन्हें कहीं भी असफल होने का या असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु भटकते ना रहें। मुझे लगता है एक दिशा में यदि वो करें तो एक्सपर्ट बनेंगे और अच्छे टीचर्स बन पाएंगे। यदि सच में ही वह टीचर्स बनना चाहते हैं तो फिर नेट पर फोकस करें, यदि वह शोध करना चाहते हैं तो नेट का एक हिस्सा, CSIR JRF का एक हिस्सा उनके लिए है और जो टीचिंग प्रोफेशन में टीचर तैयार करने के लिए आना चाहते हैं वह ITEP की तैयारी करें। यह प्रोग्राम अवश्य ही वे बच्चे और उनके अभिभावक सुनेंगे जो इस समय इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें मैं चाहती हूँ माता पिता अपनी इच्छाएं बच्चों पर ना थोपें और जो युवा है उनसे मैं यह आह्वान करना चाहती हूँ पूरे प्रेम के साथ, स्नेह के साथ और उनके प्रति सद्भाव के साथ कि वह अवश्य ही अपनी दिशा जानते हैं प्रायः, या कम से कम क्या चाहते हैं ये जानते हैं, तो उस दिशा में एक बार बहुत जोर लगाकर, बहुत परिश्रम करके वह प्रयास भी कर लें। इन 3 परीक्षाओं के लिए जिस प्रकार वह अभी तक तैयारी कर रहे थे एक बार फिर उसको दोहरा लें
और भारत सरकार की जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को केंद्रित होने, फोकस्ड होने की सलाह देती हैं और खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट का भी काम कराती हैं ताकि बच्चे किसी एक दिशा में अपने कौशल का विकास कर सके और उसमें काफी आगे बढ़ सके। इसी सिलसिले में कई बच्चों के हमारे पास संपर्क होते हैं ऐसे जो ये कहते हैं कि उन्होंने पहले MBA कर लिया, फिर इंडस्ट्री में चले गए, फिर वहां काम किया। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने MA करने के बाद नेट नहीं किया, UGC नेट नहीं किया और उसके बाद ना PhD की, लेकिन वो इंडस्ट्री में चले गए और 10 साल काम करने के बाद फिर वो प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या सीमाएं हैं? क्या उन्हें भी नेट करना होगा फिर से या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को भी UGC काउंट करता है?
जी बहुत सुंदर प्रश्न। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो नहीं करता है अप्लाई, लेकिन अभी यूजीसी ने बहुत अच्छा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में लिया है, जिसको हम प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का नाम देते हैं पीओपी, कि जो इंडस्ट्री में चले गए लेकिन जिनको लगता है कि उनके अंदर का शिक्षक अभी जीवित है और बिल्कुल जीवंत भी है, तो वह 10 वर्ष से ऊपर या उससे अधिक भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर तो सीनियर ही होते हैं, तो 20-25 वर्ष का जितना उनका अनुभव इंडस्ट्री का होता है, जिस भी फील्ड का होता है, जिसे हम व्यवहारिक अनुभव कहते हैं, उस अनुभव के साथ प्रोफेसर प्रैक्टिस के लिए विश्वविद्यालयों में अप्लाई कर सकते हैं। अनेक विश्वविद्यालयों ने यह प्रक्रिया आरंभ कर दी है, बाकी सब उसे आरंभ करने वाले हैं, क्योंकि एनआईआरएफ में और नैक में उनको इसके अंक भी मिलेंगे कि उन्होंने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी रखे हैं कि नहीं, क्योंकि यह एक सुंदर सम्मिश्रण हम शिक्षा में करना चाहते हैं, जहां ज्ञान और विज्ञान का अनुभव और शिक्षक जन्य ज्ञान का या शिक्षक जन्य सूचनाओं का, उन दोनों का सम्मिश्रण हो और उससे नए ज्ञान की प्राप्ति हो। और मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय शिक्षा नीति 2020 चाहती है कि जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा BHU के कुलगीत में हमको सुनाई देती है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगीत में महामना मदन मोहन मालवीय के विचारों में जो मिलती है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचारों में भी मिलती है, वो कहते हैं कि ज्ञान और हमारे बीच में पुस्तकें आ जाती हैं। तो ये जो एक पुस्तकों को बीच में ना आने दें हम, और जीवन के जो अनुभव हैं, जीवन का जो ज्ञान है, उनसे जो नई बातें मिलती हैं, समस्याओं को सुलझाने की और उनका सामना करने की जो शक्ति और जो प्रक्रिया हमें मिलती है, वह भी हमारे पाठ्यक्रमों में, पाठ्य पुस्तकों में चाहे आए ना आए, लेकिन पाठ्यक्रमों में आए। और इसलिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में ऐसे सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का स्वागत होगा, जो चाहे प्रशासन में हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, मतलब किसी भी फील्ड में वो हो सकते हैं, इंजीनियरिंग में हो, जिस भी फील्ड में वो होंगे, वो इसी प्रकार से मान लीजिए कोई बहुत अच्छा नर्सिंग होम चला रहा है, अभी मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन हो सकता आने वाले वर्षों में वो भी हो कि वो भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में, अच्छा सर्जन है, बहुत अच्छा ज्ञान है, तो वह भी इसमें आ सकते हैं। और उससे बच्चों को ये लाभ होगा कि जो ज्ञान उन्हें पुस्तकों से मिलता है और जो सिद्धांत उन्हें उनके शिक्षक पढ़ाते हैं, उनके साथ साथ समाज में, मानव जीवन में, जीवन के व्यवहार में उसको किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाए या प्रयुक्त किया गया है, यह जानकारी भी उनको मिलेगी। तो उनके लिए निराश न हो, आने वाले वर्षों में बहुत सारी संभावनाएं आएंगी।
प्रोफेसर सुषमा, आप प्रोफेसर होने के साथ साथ और प्रो वाइस चांसलर होने के साथ साथ आप यूजीसी की सदस्य रही हैं। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यूजीसी क्या एनटीए को कैसे तालमेल बिठाता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, ये परीक्षा कैसे लें, क्या दोनों के बीच में कोई सामंजस्य, कोई कड़ी है, और क्या सुझाव आते हैं यूजीसी से?
दोनों के बीच में सामंजस्य है। एक तो एक हमारे वहाँ पर जो संयुक्त सचिव होते हैं, उनको ये काम दिया जाता है कि वो पूरे समय उनके साथ संपर्क में रहते हैं, गाइड भी करते हैं। फिर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जाती है, जिसमें एनटीए के अधिकारी और यूजीसी के अधिकारी और सदस्य, और साथ में ही कुछ एक्सपर्ट्स जिन्हें यूजीसी नॉमिनेट करती है, जिसे चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, उनकी एक संयुक्त समिति भी बनाई जाती है, जो प्रायः पूरी व्यवस्था को देखती है, किस प्रकार के एक्सपर्ट्स रखे गए, किस प्रकार के सेंटर्स चुने गए, किस प्रकार से परीक्षा पूरी प्रक्रिया की गई, बच्चों की ग्रीवांसेस का कैसे सॉल्यूशन किया गया, यह सब का सब पूरा वह संयुक्त समिति देखती है। तो इस प्रकार यूजीसी एनटीए को एक प्रकार से सपोर्ट भी करती है, लेकिन साथ ही साथ उसको मॉनिटर भी करती है, और यह हमेशा होता रहा है। मैं इस प्रक्रिया का भाग भी रही हूँ, इसके बड़े आश्वस्त होकर कह रही हूँ कि प्रयास ये होता है कि इस परीक्षा में सब कुछ सामान्य से कहीं अधिक अच्छा हो और बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, समाज एनटीए की तरफ विश्वास से देखे, और जो विद्वत्गण इससे साथ जुड़े हुए हैं, वह उसकी विश्वसनीयता को भी और उसके जो एक्सपर्टीज होती है, जो विशेषज्ञता होती है, उसका भी ध्यान देते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं उन सब अभ्यर्थियों को जो इस समय इन परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, उनको ये कहना चाहती हूँ कि यूजीसी अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों दोनों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अब भी जुटा हुआ है, और उस रूप में एनटीए ठीक प्रकार से काम करे, और ये सारी प्रक्रिया जिसको हम विश्वसनीयता भी कहते हैं, योग्यता की बात भी कहते हैं, अर्हता की बात भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल भी कहते हैं, ये सब पक्ष अभी भी उसी प्रकार से ठीक प्रकार से चलते रहे, कि आने वाले वर्षों में इस प्रकार की कोई दुर्घटना फिर से ना हो।
जी प्रोफेसर सुषमा यादव, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कराई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की पूर्व सदस्य और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।